नमस्कार भारत, तारीख 7 जुलाई, दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इराक हमले पर चिलकॉट रिपोर्ट ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका पर उठाए सवाल, कहा युद्ध अंतिम विकल्प नहीं था। ब्लेयर ने कहा बेहद कठिन फैसला था ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए। वो जाएंगे मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और कीनिया।
अफ्रीकन कंट्रीज बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि भारत की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अफ्रीका विजिट नहीं करती है, ये उसको फिल करने की एक अटेम्प्ट है।
विंबलडन में रोजर फेडरर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। कार्यक्रम में अखबार की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका के नेतृत्व में साल 2003 में हुए इराक हमले से संबंधित चिलकॉट रिपोर्ट कल जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में ब्रिटेन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार टोनी ब्लेयर ने इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताया और पर्याप्त तैयारी के बिना सैनिकों को युद्ध में भेजा। टोनी ब्लेयर ने युद्ध में उतरने के अपने फैसले की जिम्मेदारी लेते हुए गलतियों के लिए माफी मांगी है, लेकिन इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं जताया है। उधर अम्मान में राष्ट्रीय वार्ता के लिए इराकी फ्रंट के प्रमुख सालेह मुतलाक ने कहा कि इराक युद्ध से चरमपंथ को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा इराक पर हमले का परिणाम यह था कि वह फैसला पूरी तरह से एक नाकाम फैसला था, और आज हम जिन नतीजों पर पहुंचे हैं वो इसका सबूत हैं। आज पूरी दुनिया के लिए चरमपंथ एक खतरा बन गया है, क्योंकि इराक कमज़ोर हो गया है। इराक की कमजोरी की वजह से दूसरे अरब देश कमज़ोर हो गए, और इस इलाके के देशों पर चरमपंथ का आक्रमण हुआ है। इससे इराक पर हमले के लिए ईरान के विस्तार को मदद मिली, और यह एक खतरा बन गया है, केवल इराक के लिए नहीं बल्कि दूसरे इलाके और दुनिया के लिए भी। ये थे राष्ट्रीय वार्ता के लिए इराकी फ्रंट के प्रमुख सालेह मुतलाक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को धीमा करने की घोषणा की है और कहा है कि अगले साल तक 8,400 सैनिक वहां बने रहेंगे। इससे पहले जनवरी में ओबामा का कार्यकाल खत्म होने तक अफगानिस्तान में मात्र 5,500 सैनिक रखने की योजना थी, लेकिन ओबामा का कहना है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था अभी भी अनिश्चित है और अमेरिका का लक्ष्य नहीं बदला है। अमेरिका ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन पर मानवाधिकारों का हनन करने का आरोप लगाते हुए उन पर पहली बार प्रतिबंध लगा दिया है। एक बयान में अमरीकी ट्रेजरी ने अपने देश के में उल्लंघन के लिए किम जोंग उन को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही 10 अन्य कोरियाई नेताओं के नाम भी काली सूची में डाल दिए हैं। मामले पर उत्तर कोरिया की सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक सीरियाई सेना ने पूरे देश में 72 घंटों का एकतरफा युद्ध विराम लागू किया है। यह शांति का समय स्थानीय समयानुसार बुधवार सवेरे 1 बजे से शुक्रवार की मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। कई विद्रोही गुटों का कहना है कि इस्लाम के पवित्र पर्व ईद उल फितर के दौरान लागू किए गए इस युद्ध विराम का वह सम्मान करेंगे। अर्जेंटीना और बार्सिलोना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी के वकीलों का कहना है कि वे मेसी को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करेंगे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जरा याद कीजिए साल 2003, जब अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला हुआ था। हमला था सद्दाम हुसैन की सत्ता और जनसंहार करने वाले विनाशकारी हथियारों का खात्मा करने के लिए। हमले में ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया। सद्दाम हुसैन की मूर्तियों के साथ ही उनकी सत्ता का भी खात्मा हो गया, लेकिन जनसंहार के हथियार नहीं मिले। अब इसी इराक युद्ध पर जारी बहुप्रतीक्षित चिलकॉट रिपोर्ट ने टोनी ब्लेयर के प्रधानमंत्रित्व काल में ब्रिटेन की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन ने युद्ध में उतरने से पहले शांति स्थापित करने के तमाम प्रयास नहीं किए। इराक पर सैन्य हमला अंतिम उपाय नहीं था। आधिकारिक जांच आयोग के अध्यक्ष सर जॉन चिलकॉट ने कहा
that the UK chose to join the invasion of Iraq.
चिलकॉट कह रहे थे कि ब्रिटेन की इराकी नीति पूरी तरह से कमजोर और अपुष्ट गुप्त सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई। इस नीति को किसी ने भी चुनौती नहीं दी, जबकि इसका परीक्षण किया जाना आवश्यक था। यही नहीं, इसके अलावा युद्ध के बाद बनाई गई तमाम योजनाएं भी पूरी तरह से अपर्याप्त और अनुचित थी। रिपोर्ट जारी होने के बाद तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने अपने फैसलों का बचाव किया। ब्लेयर ने कहा, प्रधानमंत्री होने के नाते इराक युद्ध में जाने का फैसला उनके लिए एक बेहद कठिन फैसला था। उन्होंने कहा, टोनी ब्लेयर कह रहे थे, मुझे भरोसा था इस तरह से इराक और मध्य पूर्वी देशों में स्थिरता आएगी। जातीय, धार्मिक, अधिनायकवादी राजनीति की जगह बहुलवादी, सहिष्णुतावादी राजनीति ले लेगी। सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक का कोई भविष्य नहीं था। टोनी ब्लेयर के शब्द। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने लंदन में मौजूद बीबीसी संवाददाता समरा फातिमा से बात की और पूछा कि लंदन की मीडिया में इस रिपोर्ट को कैसे देखा जा रहा है।
चिलकॉट रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया से ये समझ में आ रहा है कि पहले से ही लोगों के मन में ये बात थी और इस तरह का शक तो था ही, क्या हुआ है इराक में, और सरकार के पास ठोस आधार नहीं थे इस हमले के या इस जंग में शामिल होने के। तो वो जो उनके शक थे वो एक तरह से इस रिपोर्ट के बाद पूरी तरह स्थापित हो गए हैं और लोगों में बहुत निराशा है। इसके अलावा जो मीडिया हाउसेज हैं वो भी इस बात को तथ्यात्मक रूप से तो रख रहे हैं कि हाँ इस तरह से रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि सरकार के पास न्यायोचित कारण नहीं थे। और अब यह है कि मीडिया में वो सब बातें रखी जा रही हैं लेकिन किसी भी तरह की नरमी या किसी भी तरह की शक की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है टोनी ब्लेयर के लिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, जिन्होंने इस बात का फैसला लिया था कि हाँ ब्रिटेन शामिल होगा इस लड़ाई में।
सरकार की तरफ से, मौजूदा प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है, कोई संकेत मिला है कि इस रिपोर्ट के आधार पर आगे कुछ होने जा रहा है?
सरकार ने अपना तो रुख बिल्कुल ही साफ करते हुए कहा है कि उस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी ने जो समर्थन दिया था इस फैसले को या जो ये फैसला था वो एक गलती नहीं थी, उस वक्त वो हालात ऐसे थे। हालांकि ये एक गौर करने वाली बात है कि जो परिवार हैं जिनके घर से लोग लड़ाई में शामिल हुए और जिनकी जानें गईं, वो इस मामले में कानूनी कार्रवाई चाहते हैं और उनके पास काफी सॉलिड आधार होगा।
समरा फातिमा बता रही थी कि लंदन में चिलकॉट आयोग की रिपोर्ट पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। इस बीच इराक युद्ध पर अमरीका ने कहा है कि वो पिछली गलतियों से सबक लेंगे। चिलकॉट आयोग के नतीजों पर अमेरिका की प्रतिक्रिया की जानकारी के लिए मैंने वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से बात की और पूछा अमेरिका क्या कह रहा है।
देखें, पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जिन्होंने इराक पर हमला किया, उनके प्रवक्ता की तरफ से बयान आया कि बुश को रिपोर्ट पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनका मानना है कि खुफिया तंत्र की असफलता और गलतियां जिन्हें बुश पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, उन सब के बावजूद सद्दाम हुसैन के न होने से दुनिया एक बेहतर जगह है। बुश के हवाले से उनके प्रवक्ता ने कहा कि उस जंग में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में ब्रिटेन से बेहतर या मजबूत कोई दूसरा सहयोगी नहीं था। वहीं व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस का कहना था कि राष्ट्रपति ओबामा को इराक युद्ध के परिणामों से जूझना पड़ा और आने वाले राष्ट्रपतियों को भी उसके परिणामों का सामना करना होगा। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जॉश अर्नेस्ट का यह भी कहना था कि अमेरिका को भी उस गलती से सबक लेना चाहिए। वहीं विदेश विभाग के प्रवक्ता जॉन कर्बी का कहना था कि वो युद्ध के कारणों और सही गलत के आकलन पर बयान नहीं देना चाहेंगे, और विदेश मंत्री जॉन केरी, इस वक्त उनका पूरा ध्यान पूरी तरह से इराक और सीरिया में शांति की कोशिश और इराक में जो राजनीतिक सुधार की कोशिश करता रहा है उसकी तरफ रहेगा।
ब्रजेश, ये तो हमने बात की इराक युद्ध पर जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात की। बराक ओबामा ने अफगानिस्तान में अमरीकी सैनिकों की वापसी पर क्या बयान दिया है?
काफी एक अहम ऐलान किया है उन्होंने। उन्होंने पहले ये कहा था कि उनके शासनकाल के खत्म होने के बाद यानी 2017 में अफगानिस्तान में सिर्फ 5,500 अमरीकी सैनिक रह जाएंगे, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि अब वहाँ 8,400 यानी 8,400 अमरीकी फौजी तैनात रहेंगे। इस वक्त अफगानिस्तान में 9,800 अमरीकी फौजी हैं, तो उसमें सिर्फ 1400 की कटौती हो रही है। दूसरी बात यह भी है कि पहले ये बात हुई थी कि ये जो बचे हुए सैनिक रह जाएंगे वो ज्यादातर काबुल में रहेंगे और उनका काम होगा दूतावास और दूसरी जो इमारतें हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन आज राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि अभी जो अभियान है वही अगले साल भी बरकरार रहेगा, यानी अफगान फौज को जो प्रशिक्षण देती है अमरीकी फौज और इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ जो कार्रवाई होती है उसमें भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जलालाबाद और कंधार में जो फौजी ठिकाने हैं वहां से वो अफगान फौज को हवाई और जमीनी मदद भी देना जारी रखेंगे। सुनिए और क्या कहा उन्होंने। राष्ट्रपति ओबामा का ये भी कहना था कि इस फैसले से उनके बाद जो भी राष्ट्रपति बनता है उसे एक ठोस बुनियाद मिलेगी अफगानिस्तान में अमरीकी मौजूदगी पर आगे जो भी वो फैसला करते हैं उसके लिए, वहां की तरक्की के लिए, और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक लचीलापन मिलेगा जो भी वो योजना बनाते हैं उसमें। और उनका कहना था कि अफगानिस्तान पहले के मुकाबले अब एक काफी बेहतर जगह है लेकिन तालिबान का खतरा बना हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल यही है कि अफगान हुकूमत और तालिबान एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचे और इलाके के सभी देश आतंकवादियों और चरमपंथियों के जो सुरक्षित पनाहगाह हैं वहां उनको बंद करें। और बाद में जब एक व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को ब्रीफ किया उसमें उनसे पूछा गया कि क्या इशारा पाकिस्तान की तरफ था, तो उनका कहना था कि हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे थे राष्ट्रपति, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क जिस तरह से पाकिस्तान में उनको एक तरह से ठिकाना मिलता रहा है उसको लेकर के अमरीका काफी चिंतित रहा है।
ब्रजेश उपाध्याय अफगानिस्तान में अमरीकी सेना की वापसी पर बराक ओबामा के बयान की चर्चा कर रहे थे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। रुख भारत का करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी देशों की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री 5 दिन में 4 देशों का दौरा करेंगे। मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव है मोजाम्बिक। वो 8 और 9 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका में, 10 जुलाई को तंजानिया में और 11 जुलाई को कीनिया में होंगे। इन चारों देशों को अफ्रीका के प्रवेश द्वार की तरह देखा जाता है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, उनके दौरे का उद्देश्य भारत व अफ्रीका के संबंधों को बढ़ाना है। इस दौरे को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अफ्रीका अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर अजय कुमार दुबे से बात की और पूछा, भारत के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है।
ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि जो भी इंडिया अफ्रीका का एंगेजमेंट चल रहा है 2008 से, खास करके इंडिया अफ्रीका फोरम समिट से, उसमें जितने सारे उसके आयाम हैं उसमें एक जो मिसिंग था वो था पॉलिटिकल विजिट का। अफ्रीकन कंट्रीज बार बार ये कंप्लेन कर रहे थे कि भारत की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अफ्रीका विजिट नहीं करती है, जो कि बहुत सारे एग्रीमेंट को साइन करने में मदद देता है, वो भारत की तरफ से एग्रेसिवली नहीं हो रहा था। वाइस प्रेसिडेंट की विजिट, उसके बाद प्रेसिडेंट की विजिट, अब प्राइम मिनिस्टर की विजिट, तो ये जो तीनों विजिट है उसी की पार्ट है। और जो पॉलिटिकल विजिट की गैप थी इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट में और कोऑपरेशन में, ये उसको फिल करने की एक अटेम्प्ट है।
प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट शुरू हो रहा है वो मोजाम्बिक से हो रहा है। वहाँ 1980 के दशक के बाद से कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया है। मोदी का कहना है ये उनका दौरा जो है वो छोटा है लेकिन बड़ा अहम है। तो मोजाम्बिक और भारत के रिश्तों के लिहाज से आप किस तरह के इस दौरे की अहमियत देखते हैं और क्या समझौते हो सकते हैं?
मोजाम्बिक एक ऐसा देश है जो कि पुर्तगीज कॉलोनी था। भारत के जो पिछले दशकों में और सदियों में संबंध ज्यादा सुदृढ़ रहे हैं वो रहे हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज से, साउथ अफ्रीका, केन्या, तंजानिया। पिछले दशक में ये सामने निकल के आया है कि मोजाम्बिक में अच्छे क्वांटिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भंडार मिले हुए हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे खनिज पदार्थ निकले हैं जो कि मोजाम्बिक दूसरों देशों के साथ शेयर करना चाहता है और वो भारत के लिए बहुत अहम है। उसके अलावा एक वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा भी है और वो डायस्पोरा सब्सटेंशियल है इस मामले में कि वो काफी बिजनेस एरिया में एक्टिव है और अच्छे नंबर में है। तो डायस्पोरा पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट की है उसमें एक इम्पोर्टेंट एडिशन होगा और जो इम्पोर्टेंस मोजाम्बिक ने पाया है अभी अपने आर्थिक जगत में उसको फिल करने का एक मेजर स्टेप होगा।
प्रधानमंत्री को दक्षिण अफ्रीका भी जाना है, तंजानिया भी वो जाएंगे, केनिया भी जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत ब्रिक्स में भी सहयोगी है। भारत की जो अफ्रीका नीति है उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या भारत चीन को काउंटर करने के लिए जा रहा है या अपना एक नया आयाम तलाश रहा है वहाँ?
1930 से आप देखेंगे तो ये नीति रही है भारत की अफ्रीका के साथ सीधे संबंधों की और बहुत ही गहरे राजनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। ये दूसरी बात है कि अफ्रीका जब अपने आर्थिक समृद्धि की वजह से और आर्थिक संसाधन की वजह से दूसरे देशों को आकर्षित कर रहा है, उसमें चाइना भारत से बहुत आगे निकल गया है। और भारत जब अपने स्पेस में कंपटीशन फील करता है तो नेचुरली इसको चाइना का एहसास होता है वहां पे। लेकिन भारत की पॉलिसी चाइना को काउंटर करने के लिए नहीं है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए है और उसमें नेचुरली चाइना एज ए कंपटीटर सर्फेस करता है।
प्रोफेसर अजय दुबे विश्लेषण कर रहे थे भारत अफ्रीका संबंधों का। और अब एक नए कार्यक्रम का स्वागत कीजिए।
जब जीवन बचाने वाला डॉक्टर ही मौत का कारण बन जाए।
मेरे होश उड़ गए जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी हमने ये निकाल दिए हैं, दोनों ओवरीज निकाल दिए हैं और यूट्रस भी निकाल दिया है।
जब डॉक्टर ही आपकी तबाही की वजह बन जाए।
I would never advise anybody to come to India. The hospital is not responding, which is the height of inhumanity.
जब जिंदगी न्याय के लिए एक लंबी लड़ाई बन जाए।
मैंने अपना सारा प्रोफेशन ही छोड़ दिया है तो मेरी तो पूरी लाइफ इसी तरह से बीत गई है।
जीवन से खेलते डॉक्टरों से कब मांगा जाएगा जवाब? मेडिकल नेगलिजेंस के मामले क्यों बढ़ रहे हैं?
अभी जो ऊपर लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर लोगों को सस्ता, तर्कसंगत और कानूनी बढ़िया इलाज देने की जिम्मेवारी है, उनका झुकाव डॉक्टरों द्वारा बनाए जा रहे पैसे की तरफ है।
क्या सफाई देते हैं डॉक्टर?
कहां करप्शन नहीं है, ये मैं करप्शन डिफेंड नहीं कर रहा हूं डॉक्टर, पर है तो एक्शन लो उनके खिलाफ।
और क्या आपके भी हैं कोई अधिकार? मैं विनीत खरे बीबीसी हिंदी रेडियो पर पेश करूंगा खास रिपोर्टें 11 जुलाई से दिन भर और नमस्कार भारत में।
आइए अब कार्यक्रम में वापस लौटते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में हुए विस्तार और बदलाव के बाद कल ज्यादातर नए मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया। जिन मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए हैं उन्होंने भी नई भूमिका में खुद को ढालने की कवायद शुरू कर दी। इसमें स्मृति ईरानी भी शामिल हैं। स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्रालय की जगह अब कपड़ा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। स्मृति ईरानी ने अपनी बदली भूमिका को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन नई भूमिका कितनी अहम है इसकी जानकारी जरूर दी। पूरे मामले पर एक रिपोर्ट के साथ अशोक कुमार।
राजनीतिक पंडितों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस बात को लेकर माथापच्ची होती रही कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय में किया गया बदलाव उनका प्रमोशन है या डिमोशन। चर्चाएं ये भी हुई कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के सामने चुनौती पेश करने वाली स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए नई भूमिका सौंपी गई है। ये तमाम सवाल जब स्मृति ईरानी के सामने आए तो उन्होंने अपने ही अंदाज में इनका जवाब दिया।
तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
मानव संसाधन विकास मंत्री के तौर पर स्मृति ईरानी के कार्यकाल में कई विवाद हुए। हालांकि स्मृति ईरानी अपनी उपलब्धियों की बात करती हैं।
मुझे लगता है कि एक साल में देश के सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाना सभी राज्यों के साथ अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा दी हमने उन कर्तव्यों का पालन किया। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर व्यापक रूप से हर राज्य से हर गांव से डेलिब्रेशन करके उनके बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जो जनता के समक्ष है।
स्मृति ईरानी मानती हैं कि उन्हें जो नई भूमिका मिली है वो भी कम अहम नहीं है। कपड़ा मंत्री के तौर पर काम संभालते वक्त स्मृति ईरानी ने याद दिलाया कि ये क्षेत्र खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।
प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले, जो उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जो नया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैकेज घोषित हुआ है उसमें उसका संकेत है। मैं आभारी हूँ कि जिस रोड मैप को उन्होंने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई।
उधर नए मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्मृति ईरानी से मुलाकात की और उनके कामकाज की तारीफ की। जावड़ेकर ने कहा कि स्मृति ईरानी के मंत्री रहते मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जो अच्छी पहले हुई हैं वो उन्हें आगे बढ़ाएंगे।
शिक्षा को मानते हैं हथियार परिवर्तन का, और जो परिवर्तन देश को करना है, जो 21वीं सदी के भारत को खड़ा करना है, इसमें शिक्षा की एक बहुत अहम भूमिका है। उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए ही इस जिम्मेदारी का विनम्रता से मैं स्वीकार करता हूं, और उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है उस पर भी खरे उतरेंगे, और स्मृति जी ने बहुत कुछ अच्छी पहल की है उनसे भी मैं बात करूंगा।
दोनों मंत्री आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस सफर की शुरुआत जिन सवालों और अटकलों की बुनियाद पर हुई है उनके फिलहाल थमने के आसार नहीं दिखते।
अशोक कुमार ये रिपोर्ट सुना रहे थे। और अब कार्यक्रम में अखबारों का जिक्र करते हैं। मानसी, आप अखबार पलट चुकी हैं, देख चुकी हैं, बताइए क्या कह रहे हैं अखबार।
मोहनलाल जी, लगभग सभी अखबारों में स्मृति ईरानी को जगह मिली ही मिली है। अभी हम रिपोर्ट भी सुन रहे थे। मैं जनसत्ता से एक खबर पढ़ती हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूँ कि मुझे एक अवसर दिया गया है, खास तौर पर तब जब इस क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। यह दिखाती है कि प्रधानमंत्री को विश्वास है कि मुझ में उस रोडमैप को लागू करने की क्षमता है।
मतलब ये कहा है स्मृति ईरानी ने। कितने भी कयास हम लगा लें, विश्लेषण कर लें, लेकिन उनका यही कहना है कि भाई प्रधानमंत्री को पूरा
उन पर पूरा भरोसा है। जी, इसके बाद आपको बता दूं कि लगभग सभी अखबारों में आज दिल्ली सरकार ने एक पूरे पन्ने का विज्ञापन छापा है और केंद्र सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाया है। साथ ही फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी पर टैक्स चोरी के मामले में सजा और ब्लेड रनर ऑस्कर पिस्टोरियस को सजा सुनाई गई है 6 साल की, उसको भी सभी अखबारों ने जगह दी है।
और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि रीवा स्टीनकैम्प की हत्या हुई थी और जिसका अभियोग जो है वो पिस्टोरियस पर लगा है।
जी, ये हिंदुस्तान टाइम्स की मैं आपको एक खबर सुना रही हूँ। इसमें एक खबर है कि देश के पिछले 2 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं अधिक विदेशी दौरे किए हैं। जहां पहले 2 सालों में अटल बिहारी वाजपेयी ने 8 और मनमोहन सिंह ने 14 विदेशी दौरे किए थे, मोदी ने अब तक कुल 38 विदेशी दौरे किए हैं। इनमें अफ्रीका के 4 देशों का दौरा भी शामिल है। दी इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के अनुसार राजस्थान के कुछ लोगों ने दिल्ली में अपने जिंदा होने की बात को साबित करने के लिए धरना दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने उनकी रुकी हुई पेंशन फिर से शुरू कर दी है। खबर के अनुसार एक गांव के करीब 8 लोगों की पेंशन इस वजह से रुक गई थी कि क्योंकि उन्हें जो है सूची में मृत मानकर उनका नाम ही हटा दिया गया था।
जी।
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक खबर आपको बता दूं, आपको याद होगा आपसे कुछ महीने पहले रिंगिंग बेल्स नाम की एक कंपनी थी जिसने 251 रुपए में स्मार्टफोन लाने का वादा किया था और ये विवादों में भी फंसी थी। अब इस कंपनी ने कहा है कि ये बाजार में एलईडी टीवी 32 इंच का एलईडी टीवी लॉन्च करने जा रही है, और इसकी कीमत इसकी कीमत फिलहाल इसने 10,000 रुपए बताई है। चीन अमरीकियों के हाथों से नौकरियां छीन रहे हैं और अमरीकी बाजार से लाभ। अमरीका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप के इस आरोप का जवाब दे रही हैं चीनी कंपनियां। दी स्टेटमेंट में छपी एक खबर के अनुसार चीनी कंपनियां अमरीका में ऐसे टॉयलेट रोल बेच रही हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा बना हुआ है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक खबर का और मैं जिक्र कर दूं कि लीबिया में अगवा भारतीय नागरिक को छुड़ाया गया है, और ये जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी दास।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पड़ोसी देश नेपाल का रुख करते हैं। तिब्बत और नेपाल में भारी बारिश के बाद भोटे कोसी नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इससे नेपाल में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। भारत को भी सावधान रहने को कहा गया है। इसे लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने काठमांडू में मौजूद नेपाली सेवा के सहयोगी सुरेंद्र फोयाल से संपर्क साधा और पूछा ताजा स्थिति क्या है।
ये भोटे कोशी है, सप्तकोशी जो नेपाल से बहकर बिहार जाती है इंडिया में, उनका एक 7 शाखा नदियों में से एक है भोटे कोशी। ये काठमांडू से करीब 100 किलोमीटर पूर्व की तरफ से बहता है, और ये नदी जो भोट से आने वाली नदी है, ये पता चला है कि तिब्बत में बहुत बरसात हुआ था, उसकी वजह से भोटे कोशी में बाढ़ आया, और बाढ़ अचानक इतना बड़ा आया कि वहाँ जो एक बस्ती है लिपिंग नेपाल और तिब्बत के सीमा में, वहाँ करीब 20 घर को नुकसान पहुँचाया, 2 ट्रक भी बह गया। वहाँ से एक हाईवे आती है काठमांडू और निको हाईवे, वो तिब्बत को जोड़ती है काठमांडू नेपाल से, तो उस हाईवे में भी काफी नुकसान हुआ है। करीब 4 जगह पे नुकसान हुआ है, वो हाईवे अवरुद्ध है, और नीचे बाराबी से बस्ती है, वहां से भी दो गाड़ी बह गया पानी में, और एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जल विद्युत आयोजना, वहां भी कुछ नुकसान पहुंचा है। अधिकारी से बात की थी, उनका यही कहना है फिलहाल बाढ़ थोड़ा कम हो गया है, अवस्था सुधार हो रहा है।
इससे कितने लोग प्रभावित हुए और राहत के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं?
कई हजार लोग प्रभावित हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। राहत और उद्धार के लिए, सहायता के लिए नेपाल के गृह मंत्री जो है शक्ति बस्नेत, वो प्रभावित क्षेत्र में गया भी, पूछताछ किया क्या सहायता की जरूरत है।
जी आप बता रहे हैं कि जल स्तर कम हो रहा है, तो कितना कम हो गया, क्या खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है नदी या अभी भी उसके ऊपर है?
ये वोटेकोसी देखने वाले एक अधिकारी है, उनसे जो मैंने बात की थी, उनका कहना है कि अब वो सामान्य, वो जितना ये बाढ़ के मौसम में जितना होता है मानसून के दौरान बहता है, उस हिसाब से अब सामान्य हो गया है। मगर कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये मानसून सीजन है, भारी बरसात होती है बिना कुछ चेतावनी और वार्निंग, और नेपाल में जगह जगह पे बाढ़ आया था कल परसों, और ये मानसून जारी है। ये मौसमविद का कहना है मानसून एक्टिव है अभी नेपाल के ऊपर, लोग को सावधान रहना चाहिए बाढ़ से बचने के लिए, और ये बाढ़ का पानी नेपाल से होते हुए भारत भी जाती है, तो उधर भी लोग को शायद सावधान रहना होगा।
बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता सुरेंद्र फोयाल जानकारी दे रहे थे। और अब विंबलडन की खबरें।
विंबलडन 2016 अपडेट।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन में कल मेन सिंगल्स के 4 क्वार्टर फाइनल मैच हुए और एंडी मरे, रोजर फेडरर, मिलोस राउनिक और टोमास बेर्डिक सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल सेंटर कोर्ट पर दोनों ही मुकाबले कांटे के रहे। सबसे जबरदस्त मुकाबला रहा 7 बार के विंबलडन चैंपियन रोजर फेडरर का। तीसरी सीड के फेडरर को चुनौती दे रहे 9वीं सीड के कनाडा का खिलाड़ी मारिन चिलिच ने देखते देखते पहले दोनों सेट जीत लिए। अब फेडरर के सामने मैच में बने रहने का एकमात्र रास्ता ये था कि वो आगे के तीनों सेटों को किसी भी कीमत पर जीते, और फेडरर ने यही किया। 3.25 घंटे से ऊपर चले मैच का स्कोर रहा 6-7, 4-6, 6-3, 7-6 और 6-3। मैच के बाद फेडरर ने बताया कि उन्होंने अपने आप को मैच में बनाए रखने के लिए क्या किया।
I wasn't seeing his serves anymore.
मुझे चिलिच की सर्विस नहीं दिख रही थी, और अगली बात जो पता चली वो ये कि आप 2 सेटों से पीछे हैं। वो गजब खेल रहे थे, शानदार रिटर्न कर रहे थे, और इधर मैं उनकी सर्विस ठीक से नहीं देख पा रहा था, तो मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, और मेरी कोशिश केवल ये थी कि मैं टिका रहूं और इंतजार करूं कि उनके खेल का स्तर कुछ नीचा आए और थोड़ा किस्मत साथ दे, और यही हुआ भी। 34 वर्षीय रोजर फेडरर के शब्द। अब सेमीफाइनल में फेडरर का मुकाबला होगा कनाडा के एक और खिलाड़ी मिलास राउनिच से। सेंटर कोर्ट पर दूसरा जबरदस्त मैच हुआ ब्रिटेन के एंडी मरे और फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा के बीच। लगभग 4 घंटे तक चले इस मैच में पहले दोनों सेट मरे ने जीते, मगर 12वीं सीट के सोंगा ने वापसी की और अगले दोनों सेट जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। मगर आखिरी सेट में एंडी मरे भारी पड़े और उन्होंने 7-6, 6-1, 3-6, 4-6 और 6-1 से मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहां अब उनके सामने होंगे टोमास बेर्डिक। चेक गणराज्य के टोमास बेर्डिक ने फ्रांस के लुका पुई को सीधे सेटों में 7-6, 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम 4 खिलाड़ियों में जगह बनाई। कल एक अन्य क्वार्टर फाइनल में कनाडा के मिलास राउनिच ने अमेरिका के सैम क्वेरी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। राउनिच ने उन्हें 6-4, 7-5, 5-7, 6-4 से हराकर अंतिम 4 खिलाड़ियों में जगह बनाई। अब आज महिलाओं के सेमीफाइनल मैच होंगे जिनमें दोनों में ही विलियम्स पहने होंगी। पिछले साल की विजेता सरीना विलियम्स का मुकाबला होगा रूस की एलेना वेस्निनर से, वहीं वीनस विलियम्स की टक्कर होगी एंजेलिक कर्बर से। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के नेतृत्व में साल 2003 में हुए इराक हमले से संबंधित चिलकॉट रिपोर्ट कल जारी कर दी गई। इस रिपोर्ट में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के कार्यकाल में ब्रिटेन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। अम्मान में राष्ट्रीय वार्ता के लिए इराकी फ्रंट के प्रमुख सालेह मुतलाक ने कहा है कि इराक युद्ध से चरमपंथ को बढ़ावा मिला। सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक सीरियाई सेना ने पूरे देश में 72 घंटों का एकतरफा युद्ध विराम लागू किया है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को धीमा करने की घोषणा की है और कहा है कि अगले साल तक 8,400 सैनिक वहां बने रहेंगे। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। एक घंटे बाद विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। फिलहाल मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार।